السلام عليكم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي المعزلات. ایک سوال ہے کہ حضرت امیر خسرو ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محفل میں مختلف درجہ بندی ہے، جس میں اولیاء کرام اور نیک بزرگ اپنی درجہ پر بیٹھ کر آپ کی محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں. کچھ اس محفل اور اس کے آداب و مندرجات بیان کر دیں. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے بارے میں کوئی بھی شخص سر عام اس طرح گفتگو نہیں کرے گا، اور نہ اس کے بارے میں اس طرح سر محفل پوچھا جانا چاہیے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہی آدمی کچھ بیان کر پائے گا جو نیکی اور تقوی کے اس مقام پہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل. تو آپ اگر سوال مجھ جیسے گناہگار سے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ تو ایسے سوالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے انسان کو سر محفل گفتگو کرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں دو تین امکانات ہیں. اگر تو محفل میں مجھ جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو ایسے لوگوں کے علم کی کمی کی وجہ سے وہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی نہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں پریشان خیالی پیدا ہوگی. جتنا اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے اتنے اور سوال پیدا ہوتے جائیں گے. تو سوال در سوال جب نکلے گا اس میں تو سب کے جوابات آبویسلی نہیں مل پائیں گے. جہالت یقیناً خطرناک ہے، لیکن کم علمی اور کم علمی کے ساتھ یہ سمجھنا کہ میرے پاس مکمل علم ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. تو جب ہم سوالوں کے جواب نہیں پائیں گے پورے تو پھر ہمارے یہاں خیالات کا انتشار پیدا ہوگا. اس سے بچنا ہی چاہیے. ہاں، اگر وہ علماء کی محفل ہے جہاں صاحبان علم جمع ہیں، ان کے سامنے جب کوئی گفتگو ہوگی تو علم کی چونکہ بنیادیں ان کی بڑی گہری ہیں اور علم کثرت سے ان کے پاس اویلیبل ہے علماء کے پاس، تو وہ اس معاملے کو بڑی جلدی سمجھ جائیں گے اور وہاں انتشار نہیں پیدا ہوگا خیالات میں. ایک تو اس کی امکان یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم عقل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتے. انسانی عقل چونکہ محدود ہے، انسانی علم بھی محدود ہے، تو جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی ہے وہاں پھر معاملات ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ ہمارے یقین اور ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقادات, ہمارا مسلک, اس میں فرق آنے لگتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ صاحبان جو میری طرح علم سے محروم ہیں, تو اگر ہم زینہ بزینہ اوپر جائیں, جیسے دنیاوی تعلیم میں ہم کلاس ون سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں, تو اگر اس راہ میں بھی ہم اسی طرح اوپر جائیں تو چیزیں خود بخود ہماری سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. تقدیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, بڑی سختی سے منع فرمایا, اس لیے کہ اس انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر پاتی ہے. تو ایسے علم کا وہ حصہ جو میٹافزکس ہے, اس میں اگر ہم درجہ بدرجہ ایک ایک قدم اوپر کو بڑھ جائیں تو ہم سمجھتے جائیں گے چیزوں کو, اور اگر ہم جمپ کرتے رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو پھر خیالات میں انتشار پیدا ہوتا ہے, ہم کہیں پہنچ نہیں پاتے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایسے سوالات کسی صاحب علم سے آپ علیحدگی میں پوچھیے, ان سے بات کیجیے اور فرصت کے ساتھ, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے جو نقطے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے پانچ منٹ کی ملاقات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. میں غالباً ایک لمبا وقت لگے گا ان کو ایکسپلین کرنے میں تاکہ ہم جیسوں کی سمجھ میں بات آ جائے. ان کا اگلا سوال ہے کہ سماع رقص بسمل, دھمال اور اس سے وجود میں آنے والی بے خودی یا وجد کی کیفیت کی وجہ, اور سلسلہ چشتیہ صابریہ وارثیہ میں بھی سماع کی اجازت ہے, تو دعا گھر میں بھی ایسی محفل کا انعقاد ہو جائے اگر اجازت ہو. یہ رقص بسمل, دھمال, یہ اس قسم کی اور حال کھیلنا, اس کے بارے میں شاید میرا اعتقاد کوئی زیادہ درست نہیں ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ انتہائی پروقار ہے, تو اتنے پروقار ہستی اس کا دوست بے وقار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میرا ایک نظریہ, میں پہلے مانا کہ وہ زیادہ درست نہیں, شاید علم کی کمی ہے اس لیے مجھے معلوم نہیں ان چیزوں کا, کہ جو چیز کتاب, حدیث, سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتی ہے, میں اس کو شاید کوئی بہت زیادہ اس کی فیور میں نہ بول پاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہمیشہ بڑی پروقار ہوتی رہی ہے, وہاں نہ تو یہ رقص بسمل تھا, نہ وہاں دھمال ڈالی گئی کبھی, نہ کوئی किसी ने हाल खेला। मैंने अपने मुर्शिद साहब को भी इन चीजों से दूर रहते देखा, और चूंकि उनसे सीखा तो मेरा अपने ख्यालात भी यही हैं कि रब ताला तो बहुत बावकार है। दोस्त हमेशा अपने जैसों को बनाया जाता है। तो जो आदमी यूं महफिल में बेवकार हो जाए कि धवाल डालने लगे या रक्स करने लगे या हाल खेलने लगे, ज्यादा मुनासिब नहीं है। रब ताला बड़ा खुश गुफ्तार है, तो उसके दोस्त हमेशा खुश गुफ्तार होती हैं। रब ताला बहुत पाकीज़ा है, बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू करता है, तो उसके दोस्त पाकीज़ा गुफ्तगू करने वाले ही होंगे। हमें रब ताला सफाई पसंद है, उसके दोस्त हमेशा, चाहे कपड़ों की कीमत कुछ भी हो, पैबंद लगे कपड़े क्यों ना हों, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए होंगे, सफाई होगी वहां, पाकीज़गी होगी। तो वकार को हाथ से नहीं जाना चाहिए कभी। आदमी बदतरीन सूरत हाल में भी बावकार रहे, पाकीज़ा गुफ्तगू, बहुत नरम गुफ्तगू, सलीके की गुफ्तगू होनी चाहिए अगर रब की दोस्ती चाहिए है तो। ये मेरा ज़ाती एतकाद है, यकीनी तौर पे गलत हो सकता है, लेकिन मैं इसको ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। इसीलिए यहाँ पर कभी इस तरह का कुछ हुआ नहीं काम। कोशिश ये होती है कि बावकार ही रहा जाए। इनका अगला सवाल ये है कि रवायत है कि अगर मुर्शिद की शान और मर्तबा देखना हो तो उसके मुरीद की तरबियत को देख लिया जाए, मगर मुर्शिद अगर मुरीद भी मेरे जैसा निकम्मा और नामुराद हो जो अपने मुर्शिद की बदनामी का सबब ही बनेगा, तो इसकी इस कैफियत से कैसे बचा जाए। अगर आपके मुर्शिद वाकई ही मुर्शिद हैं, क्योंकि मुर्शिद तो वही होगा जो साहिब इल्म हो, तो जो आदमी इल्म के उस मकाम पर चला गया वो इन चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज हो गया कि कोई मुझे क्या कहता है, मेरे बारे में क्या ख्यालात रखता है। मुर्शिद का काम यह है कि जो कुछ उसे मालूम है वो अपने पास आने वालों तक पहुंचा दे, उनको पिक करना, उनको सीखना, उनको अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट करना, अपने कॉन्डक्ट को उसके मुताबिक ढालना, ये मुर्शिद के पास आने वाले लोगों की अपनी अपनी मर्जी है और अपनी अपनी ज़ाती तौर पर इस्तेआत है। वैसे तो रवायतन यही कहा जाता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसमें शक नहीं है, लेकिन अगर कोई शागिर्द मुझ जैसा निकल आया तो उसमें गरीब मुर्शिद का क्या कसूर होगा। तो इसलिए इस बात को सख्ती से फॉलो करना और उससे किसी मुर्शिद साहब के बारे में ख्याल कायम कर लेना मेरे ख्याल में ज्यादती हो जाएगी। सोहबत शेख में सच्चाई, पाकीज़गी और कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए, जो आपको फना फिल शेख कर दे और फना फिल अल्लाह की मंजिल पर पहुंचा दे। बात यह है कि आप अपने शेख को गाइडेंस के लिए, जहां कोई चीज समझ नहीं आ रही किसी चीज की, उससे पूछने के लिए इस्तेमाल कीजिए। बाकी जो सही मानों में मुर्शिद हैं वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अगर फॉलो करना है तो किताब, हदीस और सुन्नत को फॉलो हम कर लें। जो शेख हमारे कोई काम बात कहते हैं, कुछ बात करते हैं, तो उसको भी हम परख लें, कुरान, हदीस और सुन्नत पर, जो वाकई सही मुर्शिद हैं उनकी कही हुई बात शायद वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर समझ में ना आए, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब इंसान में इल्म बढ़ता है तो ऐसी बातें अज खुद क्लियर हो जाती हैं, तो समझ में आती कि मुर्शिद साहब की बात तो, जिसको मैं ये समझा कि ये किताब, हदीस और सुन्नत के मुनाफी है, वो दर हकीकत मेरी समझ का कसूर था, मैं नहीं समझ पाया था। तो जहां चीज हमें समझ नहीं आती, कोई गाइडेंस चाहिए है, तो हम वहां अपने शेख से गाइडेंस ले लें, समझ लें उस बात को उनसे। लेकिन ये ना करें कि हम अपना सारा बोझ शेख पर डाले रखें, कि जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो भी शेख के ऊपर फेंक दें। तो जो ये कुल्ली तौर पर तकिया करना है, ये हमें बेअमली की तरफ ले जाएगा। यहाँ जब भी बात होती है, मैं दुआ के सिलसिले में जब भी बात करता हूँ, तो वो भी मैं बेअमली से बचाने के लिए लोगों को करता हूँ कि इस्लाम में तो पहले जद्दोजहद है, मेहनत है, फिर कामयाबी की दुआ है। लेकिन इसी तरह देखिए, जैसे बीमारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम लोग बीमार हो तो अपना इलाज कराओ, तो बजाय हम दम दरूद से इलाज कराने के, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल क्यों ना करें कि हम पहले अपना इलाज कराएं, साथ दुआ करें सेहतियाबी की, और दुआ करवा भी लेंगे जिससे भी करानी है आपने। ये बेअमली की राह से हटा जाए। यहाँ हमेशा एक बात होती है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को ऐसी जगह पर न ले जाएं जहाँ हम दुआ के लिए जा रहे हैं कि दुआ कराएं कि हमारा ये काम हो जाए, इसलिए कि बच्चे बेअमली की राह सीख लेंगे, उनके अंदर से वो जद्दोजहद और मेहनत का अंसर निकल जाएगा, कि वो एक आसान रास्ता उनको नजर आ जाएगा कि बजाय मेहनत करने के दुआ करा ली जाए और हमारा काम हुए है। बच्चों को तो यही सबक दिया जाना चाहिए कि हमारी कामयाबी बेशक मशरूत है अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी फजल करम के साथ, लेकिन रब ताला ही ने तो कुरान में कहा कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो हम मेहनत पहले करें, फिर खुद भी दुआ करें, और अपने से बड़े से, अपने बुजुर्गों से जो माँ बाप हैं और दादा दादी हैं, इस तरह के जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी दुआ के लिए हम कह दें। लेकिन पहले मेहनत शर्त है। कामयाबी का रास्ता है ही ये। तो हम शेख की सुबत में बैठे ये ख्याल लेके नहीं कि मैं यहां से दुआ कराऊंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। शेख की सुबत में हम बैठे कि मुझे इस यहां से वो इल्म मिलेगा जो किसी और जगह से नहीं मिल सकता, या अगर मैं किताबों से इल्म ले रहा हूं तो उसकी एक्सप्लेनेशन अगर मुझे चाहिए है, उसकी वजाहत कहीं चाहिए है, तो मैं अपने शेख से वो ले लूं। तो अगर हम अपने शेख के पास बैठते हैं सीखने के लिए तो हमें फायदा होगा। अगर हम अपने शेख के पास बैठते हैं दुआओं के किस्से में तो वो बेअमली की राह की तरफ हम चले जाएंगे। शेख से सीखिए। हम जितना उनसे इल्म, लफ्ज में जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं कि बटोर सकें, उनसे इल्म बटोर लें। इसीलिए शेख की सोबत में बैठने का के आदाब ये हैं कि वहां जब हम शेख के महफिल में दाखिल हों तो अपनी जुबान को ताला लगा लें, अपने कान और आंखें खुली रखें, कान से वो सब सुने गौर के साथ जो हमारे मुर्शिद फरमा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने मुर्शिद को गुफ्तगू का मौका नहीं देंगे वो इल्म को उगलेंगे नहीं। तो जब हम अपने मुर्शिद को सिर्फ सुनते हैं, गुफ्तगू नहीं करने देते हैं, खुद जुबान बंद कर लेते हैं, तो इल्म आता है। इसी तरह आंखों से हम ऑब्जर्व करते हैं अपने शेख को और उसको कॉपी करते हैं तो हमें आदाब सीखने को मिलते हैं। सोहबत शेख की अक्सर लोग पूछते हैं उसका प्रोटोकॉल क्या होगा। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ यह है कि आप जुबान को ताला लगा लीजिए और शेख के पास जो इल्म है वो उन्हें उगलने दीजिए गुफ्तगू के जरिए, वो पिक करते जाइए। ये जो टर्म फनाफिल शेख की है इसको समझा जाना जरूरी है कि फनाफिल शेख अगर तो हम उन मायनों में ले लें जिन मायनों में कुछ लोग इसको समझते हैं तो फिर तो कुछ ज़्यादा दुरुस्त बात नहीं होगी। लेकिन जब हम अपने मुर्शिद से इतना प्यार करते हैं कि हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं रहती, हम अपने अक्ल को एक तरफ उठा के रख देते हैं उस मोहब्बत में, तो फिर हम अपने शेख की कहीं भी बातों पर अमल करने लगते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। तो ये फनाफे शेख की जो टर्म है वो दर हकीकत इस तरफ ले जाती है इंसान को कि अपने शेख से प्यार इस तरह से टूट के किया जाए कि जब कोई शेख कोई बात कह दे तो हम फिर अपनी मर्जी इख्तियार ना करें, हम उनको फॉलो कर लें, फिर तो हम सीखेंगे शेख से। और अगर अपनी मर्जी इस्तेमाल करते रहे तो फिर कहीं पहुंच नहीं पाते हम। इनका अगला सवाल है कि मुरीद अपने मुर्शिद को नगरी नगरी कूचा कूचा तलाश करता है, तो क्या ये मुर्शिद भी अपने मुरीद को ऐसे ही तलाश करता है? क्योंकि आप फरमाते हैं कि एक रजिस्टर या दफ्तर में मुर्शिद के नीचे उसके सारे मुरीद या बैत करने वालों का नाम लिखा जाता। साहब, कुआं कभी प्यासे को तलाश नहीं करता, प्यासा ही कुएं को तलाश करता है। अगर मुझे इल्म की तलाश है तो मुझे ही अपने मुर्शिद साहब को तलाश करना है, अपने गाइड को, अपने शायख को, अपने उस्ताद को, अपने मेंटोर को तलाश करना है। वो मुझे तलाश नहीं करते फिरेंगे। कर्ज मेरी है, मुझे ही तलाश करना होगा। जो वाकई शेख हैं वो तो घबराएंगे लोगों से, मां शायद दो चार लोगों के, बाकी उससे उनकी कोशिश ये होगी कि दूरी भागें तो बेहतर है। तो वो क्यों तलाश करने जाएंगे? ये जो आपने कोट किया, ये मैंने यकीनी तौर पे ये बात कही, आज भी कहता हूँ, उसी पर यकीन भी है मेरा कि मैंने अपने मुर्शिद साहब से यही सीखा था। लेकिन ये बात है बैत कर लेने के बाद कि जब हम किसी शेख के हाथ पे बैत कर लेते हैं तो हमारा नाम उनके नीचे लिखा जाता है। अब इसको अगर हम वजाहत में चले जाएंगे तो हमारे शेख जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो जिस मसलक के भी होंगे हम उसी मसलक पर चल पड़ेंगे। तो इससे मुराद ये है कि हर मुरीद अपने मुर्शिद साहब ही के मसलक पर चलता है, वो उन्हीं के नाम से मंसूब हो जाएगा। लेकिन वो बैत करने के बाद के मामलात हैं, बैत करने से पहले के नहीं। इन्होंने सवाल पूछा है कि औली अल्लाह अपने मुर्शिद के की कब्र मुबारक के अलावा भी और बुजुर्गान दीन के कबूर पर रेगुलर हाजिरी देते हैं और आप भी फरमाते हैं कि वो लाद कर भेजते हैं, तो मुर्शिद इस पर रोशनी डाल दें कि किस किस्म के इनाम इकराम होते हैं और ऐसा कौन सा अमल उनका महबूब तरीन है जो कबूलियत का दर्जा पा जाता है। बात यह है कि ये रूहानियत के मामलात हैं और रूहानियत की इब्तदा ही उस वक्त होती है जब इंसान दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल कर फेंक देता है, जब उसके नज़दीक दुनियावी माल व ज़र की हकीकत कंकर की तरह नहीं हो जाती। तो जो लोग इतने बुलंद मर्तबे पर फायज हुए अल्लाह ताला के तक्वे के ज़रिए से, अल्लाह की बंदगी के ज़रिए से, वो अगर किसी को लाद लदा के भेजेंगे तो वो इल्मी बरकात ही हो सकती हैं, रूहानी बरकात हो सकती हैं। वो ये तो हो नहीं सकता कि वो मुझे दो चार ऊंट दौलत के लाद के मेरे हवाले कर दें, तो वहां से तो इल्म ही मिलेगा। हम कब्रों पर जरूर जाएं इसलिए कि हमें अपना अंजाम भी नजर आता है और एक इबरत भी होती है कि इंसान इसी मिट्टी के नीचे आ जाएगा। तो ये जो मैं दुनिया की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं, इसका फायदा क्या है। एक जमाने में यहां मैंने आपसे उस वजीर का किस्सा बयान किया था जिसके बारे में बादशाह का ये ख्याल हुआ, उस तक इत्तलात ये थी कि ये करप्शन करता है। तो बादशाह ने ड्यूटी लगाई इंटेलिजेंस वालों की कि इस वजीर के बारे में मुझे ये इत्तलात आई हैं, इसको चेक करो कि इनमें सच्चाई है या नहीं। तो उसको तहकीक के बाद बताया गया बादशाह को कि ये बात तो कन्फर्म है कि वजीर साहब करप्शन करते हैं, लेकिन इतनी होशियारी और समझदारी के साथ के कोई ट्रेस छोड़ते नहीं है, तो इसका सबूत नहीं मिल पा रहा। तो बादशाह ने उस वजीर को बुला के ये कहा कि आपके बारे में मेरे पास इत्तलात थी जिस पर मैंने तहकीकात कराई थी, और तहकीकात के नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है वो ये है कि आप बिलाशुबा करप्ट हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से करते हैं कि उसका कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि मैं आपको बगैर किसी सबूत के सजा न दूं, और मैं नहीं दूंगा सजा। लेकिन चूंकि ये कंफर्म हो गया कि करप्शन आप करते हैं, तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। मैं आपकी काबिलियत परखने के लिए आपसे तीन सवाल पूछ रहा हूं। अगर आपने विद इन 48 आवर्स उसका जवाब मुझे नहीं दिया तो नाअहली नालायकी के जुर्म में तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो वजीर साहब अकलमंद थे, बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी थे आपकी तरह, तो उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा था। तो उन्होंने कहा कि जरूर पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। तो बादशाह ने उनसे पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तीसरा, इंसान रब ताला के अहकामात से रूगर्दानी किस सूरत में करता है। तो वजीर ने तीनों सवाल सुने और दिल में हंसा के ये तो 48 आवर्स का 48 सेकंड्स का काम है, जवाब दे दूंगा। लेकिन चूंकि बादशाह ने कहा कि 48 आवर्स के बाद आके इसके जवाब दीजिए, तो चले गए घर। बैठ के सोचना शुरू किया तो पता ही चला कि उन तीनों सवालों के जवाब मिल नहीं रहे। अपने हलके के लोगों से पूछा, जो लोग दानेश्वर मशहूर थे, अकलमंद मशहूर थे, उनसे जाके पूछा, लेकिन सवालों के जवाब मिले नहीं उन्हें। तो जब सवाल जवाब नहीं मिले तो वजीर ने सोचा कि वजारत चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन जान तो ना जाए। तो मैं अब अगर यहां से भाग जाऊं, अभी मेरे पास 12 घंटे मौजूद हैं, तो फिर बादशाह मेरा सर कलम नहीं करेगा। फैमिली को वहीं छोड़ा और खुद सफर के लिए निकल गए। गर्मी थी, चलते रहे कि मैं मुल्क की सरहद के पार चला जाऊं। तो एक जगह थकन और प्यास ने बेहाल कर दिया, तो पानी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ा रहे थे, तो देखा कि वह सामने एक बुजुर्ग हैं बारिश, वो हल चला रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि काश्तकार है तो लस्सी और रोटी वगैरह इसके पास होगी, तो मैं इससे जाके मांगता हूँ कि मुझे पानी पिला दे। तो वजीर साहब उन बुजुर्ग के पास चले गए, काश्तकार के पास, और जाके उससे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, प्यास लगी है, अगर पानी पिला सके मुझे आप। तो काश्कार ने इन्हें गौर से देखा और कहा कि बिल्कुल मैं भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पानी का प्याला दिया तो उसने कहा कि आप चेहरे मोहरे से कोई बुलंद मर्तबा इंसान दिखाई देते हैं, तो ये पापयादा जो आप चल रहे हैं तो क्या कोई परेशानी है आपको? इन्होंने सोचा कि एक अनपढ़ काश्तकार है, मैं इसको क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ परेशान हूं। उसने कहा नहीं, आप आम आदमी नहीं हैं, हैं कोई बड़ी शख्सियत, तो अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दें, हो सकता मैं आपको हेल्प कर दूं। तो इसने कहा कि आप क्या हेल्प करेंगे, आप अनपढ़ आदमी हैं, तो मैं तो बड़े बड़े दानिश्वर बड़े आलिम लोगों से पूछ चुका, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। तीन सवाल हैं बादशाह ने पूछे हैं, जवाब न देने की सूरत में मेरा सर कलंक कर दिया जाएगा, तो जान बचाने के लिए मैं मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ, इसलिए ये जा रहा था। तो मैं कहा कि आप मुझे सवाल बता दें, हो सकता मैं जवाब दे दूँ। तो इसने फिर कहा कि वो सवाल ऐसे नहीं जिसका जवाब कोई अनपढ़ आदमी दे सके। वो काश्तकार ने कहा कि बाज़ का होता ये है कि बड़े बड़े आलिम जिसका जवाब नहीं देते उसका अनपढ़ आदमी जवाब दे देता है। मैंने कहा अच्छा चलिए पूछते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। तो इसने कहा कि पहला सवाल तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? तो वो किसान ने बगैर सोचे फौरन एक्सटेम्पोर जवाब आया, इंस्टेंट, कि मौत। तो वजीर हैरान हुआ कि मेरा दिमाग उधर गया ही नहीं था। तो ये वाकई ऐसी चीज है जिससे किसी तौर भी रूगर्दानी हो ही नहीं सकती। मैंने कहा जी अब दूसरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो काश्तकार ने कहा कि सबसे बड़ा झूठ यह है कि अगर मैं ये कहूं कि बैल और ये हल और ये घड़ा ये जमीन मेरी मलकियत है, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो वजीर ने पूछा कैसे? मैंने कहा कि अगर ये मेरे हैं तो मैं जहां भी जाऊं इन्हें मेरे साथ जाना चाहिए, तो कब्र में तो मैं खाली हाथ जाऊंगा, तो अगर ये सच हो तो मैं खाली हाथ क्यों जाऊं, ये सब मेरे साथ जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का कि मैं ये कहूं कि फलां चीज मेरी मलकियत है। तो मुझे इसी बात से वो दुनियावी मालोजर से ये किस्सा याद आया था। या आपकी दिलचस्पी के लिए तीसरे सवाल का भी जवाब बता देता हूं। तो वजीर बड़े खुश हुआ, उसे उम्मीद हो गई कि तीसरे सवाल का भी जवाब बाबा जी दे देंगे। तो मैं कहा जी तीसरा सवाल ये है कि इंसान रब ताला के हुक्म से रूगर्दानी किन हालात में करता है? तो किसान ने कहा कि देखिए आप वजीर हैं, मैं गरीब आदमी हूं। तीसरे सवाल का जवाब मुझे आता है लेकिन मैं एक सूरत में दूंगा, अगर आप मेरे घर तक चलें तो। तो वजीर ने सोचा कि चलो सामने घर है इसका, मैं चला चलता हूँ, इसमें क्या है। तो बाबा जी अपनी सारी चीज़ें वहीं छोड़ वजीर के साथ अपने घर चले गए। वहाँ जाके उन्होंने उसे चारपाई पे बिठाया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास यही है बैठने को, तो तशरीफ रखिए आप इस पे। बेटे को आवाज़ दी और कहा कि जिस बर्तन में कुत्ते को हम खाना देते हैं वो बर्तन ले आओ। वो बर्तन आ गया, बेटे से कहा दूध ले आओ और इसमें डालो। बेटे ने डाल दिया दूध, कहा कि अब कुत्ता भी ले आओ। तो कुत्ते के आगे वो बर्तन रखा, जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया तो इन बुजुर्गों ने कहा कि कुत्ता ले जाओ वापस। उसके बाद वो बर्तन उठाया, जिसमें कुत्ते का झूठा दूध था, और वजीर से कहा कि जवाब जरूर दूंगा आपके सवाल का, लेकिन आप ये दूध पिए। तो वजीर भड़क उठा, उसने कहा कि पागल हुए हो, कुत्ते का झूठा दूध पीऊंगा, नजिस। कहा ठीक है, फिर मैं जवाब नहीं देता, नहीं तो आप दूध पिए। अब वो दोनों में बहस हुई, बाबा जी अपनी जगह डटे हुए कि मैं उस वक्त तक इसका जवाब नहीं दूंगा जब तक आप दूध नहीं पियेंगे, और वजीर ये कह रहा है कि मैं कैसे पी सकता हूँ कुत्ते का झूठा दूध। बिलाखिर वजीर ने सोचा कि मैं पी लेता हूँ, जब ये मुझे जवाब दे देगा तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा, ताकि ये किसी को बताने के लायक ही न रहे कि मैंने कुत्ते का झूठा दूध पिया था। तो उसने कहा कि लाओ बर्तन दो, मुझे पी लेता हूं। तो जब वो होंठों तक ले गया उस बर्तन को, तो बाबा जी ने पकड़ लिया और कहा कि ना इसको ना पियो, ये पलीद है। उन्होंने कहा कि यही जवाब है कि दो ही सूरतों में इंसान रब ताला के अहकामात से सरताबी करता है, या लालच में या खौफ में, यही जवाब है। बात यह है कि मुर्शद इल्म के उस मकाम पर जाएगा ही उस वक्त जब उसकी नजर में दुनियावी माल उजर की कीमत उतनी भी ना हो जितनी कंकर की कीमत होती है। तो जिस चीज को वो वैल्यूएबल नहीं समझता, वो अपने पास आने वाले को वो चीज कैसे देगा? तो इसलिए इन बुजुर्गों के पास अगर हम जाते हैं, तो जो मैंने अर्ज किया था कि वो लाद लदा के भेजते हैं, वो दुनियावी माल उजर नहीं होता, बल्कि वो इल्मी माल उजर होता है। इनके इसी सवाल का दूसरा हिस्सा, और ऐसा कौन सा अमल इनका महबूब तरीन है जो कबूलियत का दर्जा पा जाता है? तकवा और परहेजगारी। इंसान इंटेलेक्चुअली जितना पाकीजा होगा, उसी कदर रूहानी तरक्की होगी उसकी, उसकी रूह उतनी ही लतीफ होती चली जाएगी। इंटेलेक्चुअली पाकीजा होना बड़ा जरूरी है कि हमारे जहन में ये ख्याल ही ना आ पाए कि इंतकाम नाम की भी कोई चीज है, बदला लेना भी है कोई। हमारे जहन में कभी ये ख्याल ही ना आए कि फला आदमी बुरा है। हम मैल प्रैक्टिसेस की तरफ सोचे ही नहीं कभी। तो इंटेलेक्चुअली जितने पाकीज़ा हम होते चले जाएंगे, रूह की बालीदगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो जब हम इसको हम उर्फ़े आम में ये कहते हैं कि दिल हमारा साफ हो जितना, जब हम इतने साफ दिल लोग होते हैं, तो फिर उस दिल पर इल्म उतरता है। मैंने यहीं किसी जमाने में ये अर्ज किया था कि जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि दिल की 10 आलाइशें अगर पाक कर ले, तो इल्म की राह पे चल पड़ता है बंदा। उसमें गुस्सा, कीना, हसद, हिर्स, हिर्सुल कलाम, हिर्सुल तवाम, ये सब चीज़ें उसमें 10 मैंने गिनवाई थी आपको। गीबत, और कमाल ये है कि गीबत की मां हसद है। गीबत हमेशा जन्म लेगी हसद के रास्ते से। जब मैं किसी से हसद करने लगूंगा तो मैं इसकी गीबत बयान करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गीबत की मां हसद है। हसद को अगर मैं खत्म कर दूंगा अपने अंदर से तो मैं गीबत को खत्म कर लूंगा। इंशाल्लाह बाकी आइंदा एक बार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे। अस्सलामु अलैकुम।